कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुश रहता और खुशी बांटता।
निर्मोही के तौर करेंगे,
निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे।
कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
ओम शांति। अहो सौभाग्य, डबल लॉटरी है ना। तो हैविंग बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर वुमेन इन इंडिया एंड कन्फर्ड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, नारी शक्ति बी के शिवानी, अचीवमेंट सक्सेस कैसे, कर्म और बैलेंस जो बहुत विस्तार से अभी हमको समझाएंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी।
सीधा होकर बैठे। फिर से ध्यान को लेकर आए ब्रिकुटी के बीच। बहने भाइयों के पाँव में नहीं बैठते, आगे आ जाओ या पीछे बैठो, आगे आ जाओ और आगे आओ। सीधा होकर बैठे। फिर से एक मिनट में ड्रिल करेंगे। ध्यान को लेकर आए ब्रिकुटी के बीच। और देखें खुद को, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूं। देखना है खुद को। सिर्फ सोचना नहीं है, देखना है। मन सोचता है, बुद्धि विजुअलाइज करती है, तो बुद्धि के नेत्र द्वारा देखना है। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, अब इसको फील भी करना है कि जैसे ये कपड़ा मैंने पहना हुआ है, ये शरीर भी एक कपड़ा है, ये वो चोला है जो मुझ आत्मा ने पहना हुआ है। मैं आत्मा एक लंबी यात्रा पर हूं, इसको महसूस करें, इसके ऊपर मनन करें कि हम एक लंबी यात्रा पर हैं। आज इस शरीर में हैं, इससे पहले कहीं और थे, इसके बाद कहीं और होंगे। ये निरंतर चलता रहेगा। इसके पहले कोई और शरीर, कोई और परिवार, इसके बाद नया शरीर, नया परिवार। ये मुझ आत्मा की यात्रा है। ये सब कुछ जो मुझे आज मेरा लगता है, ऐसे लगता है सदा मेरे साथ रहेगा। ये एक क्षण में सब छूट जाता है और मैं आत्मा अकेले अपनी अगली यात्रा पर शुरू हो जाती हूँ। समझाएं अपने आप को, ये सब कुछ जो आज मेरा है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेम्प्ररी है। ये मुझ आत्मा की यात्रा है, पाना फिर खोना, फिर पाना फिर खोना। इस यात्रा पर मैं आत्मा हूं। एक सेकंड के लिए विजुअलाइज करें, मैं आत्मा इस देह से बाहर, जस्ट मैं आत्मा मस्तिष्क से थोड़ा सा बाहर अपने आप को देखें। ये शरीर सिर्फ शरीर, ये मुझ आत्मा की यात्रा है। मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती हूँ? इसको फील करें, फिर से एक सेकंड देखें। मैं आत्मा इस शरीर के बाहर, जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर के बाहर, मुझ आत्मा के पास क्या क्या है? फिर शरीर को पहन लें, फिर शरीर से बाहर, मेरे साथ क्या जाता है। ओम शांति। कोई भी काम अगर प्रैक्टिस करते रहो तो आसान हो जाता है। यस, आसान हो जाता है। किस किस को पक्का है कि इस देह को त्यागना है एक दिन? पक्का है? और कौन कौन चाहता है कि इसको आराम से छोड़े? आराम से छोड़ना है। और दूसरा कौन कौन चाहता है कि जब छोड़ें तो बस खुश खुश आगे जाएं? आप आगे खुश खुश जाना चाहते हैं? सुबह तो कह रहे थे खुशी है नहीं हमारे पास, और अब जाना भी खुश खुश है। तो खुश खुश जाने के लिए पहले खुश खुश जीना पड़ता है। और खुश खुश जीते हुए अगर ये याद रहे कि जाना है, तो फिर जाने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई कपड़ा है बहुत टाइट है ना, कभी कभी कोई कपड़ा बहुत टाइट होता है, उसको चढ़ाने में भी बहुत टाइम लगता है और उसको उतारने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत खींचना पड़ता है। लेकिन अगर 5-6 बार उसको चढ़ाओ उतारो किया, तो फिर उसको उतारना चढ़ाना क्या हो जाएगा? बहुत सहज हो जाएगा। हर रोज इसको एक बार प्रैक्टिस करना। मैं आत्मा शरीर के बाहर, देख सकते हैं अपने आप को शरीर के बाहर? कहाँ देखना है पहले आत्मा को? यहाँ, ठीक है? यहाँ देखे, एक छोटी सी बिंदी, चमकता हुआ सितारा। और फिर एक सेकंड में मैं आत्मा इस शरीर के बाहर। डरना मत, शरीर नहीं छूटेगा, शरीर नहीं छूटेगा, लेकिन शरीर को सहज डिटैच होने की आदत पड़ जाएगी हमें बॉडी से। तो कैसे विजुअलाइज करना है? मैं आत्मा यहाँ, और फिर एक सेकंड के लिए यहाँ, और इस शरीर को ऐसा फील करें जैसे बॉडी पड़ी हुई है पीछे। शरीर देखा है ना कैसे पड़ा रहता है पीछे? बस ऐसा फील करना है, फिर वापस आ जाना है। फिर हर रोज ऐसे प्रैक्टिस करना है। अगर ये प्रैक्टिस हो गई तो उस दिन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस इसलिए नहीं करनी है क्योंकि शरीर छोड़ना है, लेकिन ये प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है कि मैं इस बॉडी से डिटैच्ड हूँ। और जितना हम शरीर से डिटैच्ड का अभ्यास करेंगे, उतना शरीर, परिस्थिति और व्यक्तियों का हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उससे डिटैच्ड हो जाते हैं। जो चीज़ हमें पहले मिलती है उसी को खोने का सबसे ज्यादा डर है। आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, सबसे पहला चीज क्या मिलता है? सबसे पहली चीज क्या मिलती है? ये शरीर। फिर शरीर के ऊपर मिलता है नाम, फिर माता पिता, फिर आगे दोस्त, भाई बहन, फिर आगे पति पत्नी बच्चे, फिर लंबी यात्रा। तो इस यात्रा को एक बार देख लें। शरीर मिलता है और लास्ट सीन में शरीर होता है। इस बीच में बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ खोता है। लेकिन जो कुछ मुझे मिलता है, अगर मेरा उसके साथ ऐसे अटैचमेंट हो जाता है, खोना है ये पता है लेकिन जीवन जीते हैं खोने के डर से। किस किस को पता है खोना है? सबको पता है। फिर डर किस बात का है? वो तो होना ही है। डरना तो उस बात के लिए चाहिए कि भाई ये हो ही ना, ये होना ही नहीं चाहिए। वो तो हो नहीं सकता, वो तो होना ही है। क्या क्या खोना है? क्या क्या खोना है? क्या हमने देह त्यागना है? हाँ। हमारे आसपास जो है उन्होंने भी देह त्यागना है? यस और नो? त्यागना है। हाँ। अब अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो हमें पता होता था अभी कुछ नहीं होने वाला किसी को। फिर 80-90, उससे ज्यादा 80-90 की आयु हो तो बोलते अब तो कभी भी जा सकते हैं। तो धीरे धीरे परिवार उस चीज के लिए क्या हो जाता था? थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि हाँ 80-90 उससे ज़्यादा आयु हो गई, अब देह त्याग सकते हैं। अब कौन सा युग चल रहा है, अब कौन सा युग चल रहा है, अब कौन सी आयु में त्याग सकते हैं हम, अब हम कौन सी आयु में देह त्याग सकते हैं, सुनाइए। कभी भी, इसको कहते हैं अचानक। क्या कहेंगे शब्द को, अचानक। कौन सी आयु में, कौन सी आयु में, कभी भी, अचानक। तो जब ये पता था कि कौन सी आयु में देह त्याग करना है, तो उस आयु में पहुंचते पहुंचते शरीर के मन तैयार हो जाता था। लोग धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा क्या करना शुरू करते थे, डिटैच करना शुरू करते थे कि अब तो मुझको जाना है। लोगों को सब कुछ सौंपना शुरू करते थे, सारी तैयारी करते थे, दान पुण्य भी पहले करते थे कि हमको कभी भी अब जाना है। तो अपने कर्मों का ध्यान रखते हुए, सारा अपना लेखा जोखा थोड़ा थोड़ा समेटते हुए, सबको जो कुछ देना था वो देते हुए, सबको जिम्मेवारी देते हुए तैयार होते थे जाने के लिए। और अगर तैयार होंगे जाने के लिए तो जाना सहज हो जाता है, सहज हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब अचानक होता है, तो ना हम तैयार होते हैं जाने के लिए, ना हम तैयार होते हैं किसी और के जाने के लिए। राइट बात है ये? तो खुद का जाना भी बहुत मुश्किल लगता है और दूसरे का जाना सहन हो नहीं पाता है। लेकिन जैसा मौसम होता है वैसी तैयारी रखनी होती है। अगर मौसम के हिसाब से तैयारी नहीं रखी तो मौसम तो वैसे ही होने वाला है, हमें मुश्किल ज्यादा होगी। बारिश के मौसम में हम छाता नहीं लाएंगे तो हमको ही मुश्किल होने वाली है, बारिश तो होनी ही है। थोड़े महीनों के बाद सर्दी होगी तो हमको तैयारी करनी है, सर्दी हमारे लिए नहीं बदलेगी, हमको तैयारी करनी है। तो कलयुग का अंतिम समय मतलब अकाले मृत्यु बढ़ती है। और इसका मतलब ये नहीं हमें मृत्यु के बारे में सोचना है, नहीं, इसका मतलब ये है हमें पता होना चाहिए कि ये कभी भी हो सकता है। और अगर कभी भी हो सकता है तो क्या करके रखना चाहिए, क्या करके रखना चाहिए, क्या तैयारी करेंगे, क्या तैयारी करेंगे। एक मिनट आंख बंद करो, 10 बजने वाले हैं आज, आज दोपहर को 1 बजे हमने शरीर छोड़ना है। अब तैयारी करो, मतलब सोचो क्या करेंगे आप 3 घंटे के अंदर। सिर्फ 3 घंटे हैं और आप यहां हैं, अपने शहर अपने घर में भी नहीं है। आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे के बाद आत्मा ने इस देह को त्याग देना है। उसके बाद किसी भी परिवार के सदस्य से, किसी भी संबंधी से, किसी भी काम से कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए नहीं कर पाएंगे। लेकिन 3 घंटे में जो करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास 3 घंटे हैं। अच्छे से चेक करो, 3 घंटे में जस्ट जाने से पहले मुझ आत्मा को क्या करना है। और आपके पास पेपर पेन है, उसको लिखो के क्या करना चाहते हैं आप, इसको आज लिखिए, बहुत साक्षी होकर लिखिए। ये किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, ये अपने लिए है। 3 घंटे हैं, क्या करना चाहते हैं, किसी को कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कुछ देना चाहते हैं, किसी से कोई पुरानी बात सुलझाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और करने का लक्ष्य क्या है कि जाने से पहले आत्मा कैसे हो, कैसे हो के आत्मा एकदम लाइट, मतलब सारा जो लेन देन है वो सॉर्ट आउट करना है। किसी किसी को कुछ आ रहा है, क्या करना चाहेंगे अगर 3 घंटा है? हाथ उठाओ. किसी को कुछ थॉट्स आ रहे हैं, क्या करना है? कोई बताना चाहेगा, व्यक्तिगत नहीं लेकिन वैसे ही मोटा मोटा, क्या करना चाहेंगे 3 घंटे हैं तो? ठीक है, भाई साहब ने कहा किसी के साथ कुछ गलत किया हो क्षमा करेंगे, किसी के साथ कोई वाद विवाद हुआ होगा उसके साथ बात करके ठीक करेंगे. कौन कौन फील करता है ये करना चाहिए 3 घंटे के अंदर? तो लिखो अपने लिस्ट के अंदर. अभी लिस्ट बनाते हैं क्या क्या करना है जाने से पहले. किसी के साथ गलत किया हो तो क्षमा मांगेंगे, किसी ने हमारे साथ गलत किया हो तो उसको क्षमा करने की जरूरत है क्या जाने से पहले? जाने से पहले क्षमा करने की जरूरत है तो फिर लिखें उसको. जिसने हमारे साथ गलत किया हो उसको क्षमा करना है, जिसके साथ हमने गलत किया हो उसको क्षमा मांगनी है. किसी के साथ कुछ गलत नहीं, बस वाद विवाद ही हुआ है ज्यादा, लेकिन वो भी तो कर्म का लेन देन हुआ ना, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? बात कर लेंगे कि उस बात को क्या करना, भूल जाना, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही हो गया. ठीक है जी, और कुछ करना है जाने से पहले 3 घंटे हैं? हाँ जी, क्या करना है? लेटर लिखना है? अच्छा, विल लिखनी है. विल तो अभी भी लिख सकते हैं, वो लास्ट 3 घंटे में क्या लिखने हैं वो तो अभी लिख के रख लो. हम सब विल लिखते हैं, हम सब इंश्योरेंस पॉलिसी भी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करके रखते हैं. इस सब के पीछे का इंटेंशन क्या होता है कि हमारे पीछे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. हम उस टाइम ये नहीं सोचते हम क्यों मृत्यु के बारे में सोचे, हम थोड़ी अभी जा रहे हैं. नहीं, हमको पता है कभी भी हो सकती है. पीछे के लिए हम विल भी बनाते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी भी बनाते हैं. ये होता है कि जो पीछे रहने वाले हैं उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए. अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो जाने वाला है उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए. और कुछ करना है? हाँ जी, अच्छा, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे जाने से पहले. वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल. और वेरी गुड, भाई साहब कहते किसी के साथ प्रॉपर्टी पर झगड़ा है उसको सॉर्ट आउट करके जाएंगे ताकि आगे बच्चों को मुश्किल ना आए. हाँ, बहुत अच्छा. और हाँ जी, थोड़ा और जोर से बोलोगे तो. खुश रहना है, कुछ भी गलत नहीं करना है ना, यही मीनिंग है ना मोटा मोटा. हाँ, और बताओ 3 घंटे में क्या करना है? अच्छा, परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, बहुत बढ़िया. और बताओ, सभी के लिए दुआएं करनी है. वेरी गुड. और कौन कौन करना चाहेगा ये जाने से पहले? सबके लिए दुआएं. अब तो जा रहे हैं, अब क्या लेन देना उनके साथ? क्यों करनी है उनके लिए दुआएं? बहुत अच्छा कर्म है, क्यों करना है? लेकिन हम फिर से मिलेंगे. हाँ, और देखा, कभी बैठ के सोचा था ऐसे इतना कि जाने से पहले क्या करना है? इतनी लंबी लिस्ट निकल के आएगी. आप यहां 4 दिन के लिए आए, यहां 4 दिन के लिए आने के लिए भी आपने बहुत कुछ किया होगा आने से पहले. कितना होता है घर में करके आने के लिए आने से पहले, ऑफिस में करके आने के लिए आने से पहले. हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं. तो क्या तैयारी करनी पीछे? और कुछ रह गया जो करना है? दुआएं देनी है सबको. हां जी, ज्ञान को क्या करेंगे? जो ज्ञान मिला है उसको क्या करेंगे? 3 घंटे में ज्ञान सुनेंगे आप जाने से पहले? ओ, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. और क्या करेंगे? सारे आंसर करेक्ट है, बिल्कुल. और कुछ करना रह गया? किसी को कोई आइडिया आया तो सबको वो आइडिया आ जाएगा फिर. जी, कुछ नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे, पीछे जो होता रहे. कुछ नहीं करना हमको. हाँ, अच्छा ओहो ये तो हमने सोचा ही नहीं था, अब तो छोड़ना ही है, तो 3 घंटा इस शरीर को अच्छे से यूज करें, इसका सुख पाए, खाए पिए कुछ। हमने लोग देखे हैं जो जाने से पहले खाना चाहते हैं कुछ। कुछ समय पहले एक भाई हॉस्पिटल में था, उसके पूरे लंग डैमेज्ड हो गए थे स्मोकिंग से, मतलब अच्छी तरह से। तो डॉक्टर ने बोला था अभी कुछ नहीं, सबको बुला लो आप। तो वो बोलता है मुझको एक सिगरेट पीनी है। तो परिवार वाले बहुत नाराज हुए, भाई जिस वजह से तुम आज हॉस्पिटल में पहुंचे हो तुम अभी बोलते हो मुझे सिगरेट पीनी है। तो वो डॉक्टर बहुत समझदार कहता है अभी क्या फर्क पड़ता है, उसकी इच्छा तो पूरी करो ना, उसने तो वैसे भी जाना है, उसको पीने दो। तो उस आत्मा को वो करके भी बहुत सुकून मिल रहा था। तो हरेक का प्रायोरिटी, जो हमारे जीवन जीते हुए हमें प्रायोरिटी होगी वही जाते वक्त भी वही प्रायोरिटी होगी। हम जाते वक्त चेंज नहीं हो सकते, हमें जीते समय चेंज होना पड़ेगा, जाते समय नहीं चेंज कर सकेंगे, जाते समय नहीं कर सकेंगे। इसीलिए तो जाने के बाद कहते हैं ना, उनकी जो जो इच्छा है उसको क्या करना है, पूरा करना है। तो वो क्यों हमारी इच्छा पूरी करे, हम ही अपनी इच्छाएं पूरी करके जाएंगे सारी। और अगर वो पीछे पूरी भी करेंगे लेकिन हम तो इच्छाओं के साथ ही चले गए ना, तो एक सबसे सहज जीवन जीने का तरीका कि सब कुछ करना है, सबके साथ होना है, लेकिन कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, संतुष्ट रहकर जीना है। संतुष्ट, सब बढ़िया है, सब परफेक्ट है और सेवा करते रहो। लेकिन ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, तो परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन देते हैं, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती। रिपीट करो इसको, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती। इसका मीनिंग क्या है, इच्छा आत्मा की शक्ति को क्या करेगी, घटाती है। संतुष्टता आत्मा की शक्ति को क्या करेगी, बढ़ाती है। तो सब कुछ करें लेकिन ये इच्छा की लंबी लिस्ट नहीं चाहिए, जो इच्छा है उसको अभी पूरा करें। कुछ रह गया और जाने से पहले करना है, शुक्रिया सबको करना है। किस किस का मन है सबको शुक्रिया करने के लिए, जाने से पहले किस किस को शुक्रिया करेंगे, जिन्होंने आपका ध्यान रखा, जिन्होंने आपकी सेवा की, जिन्होंने आपको सम्मान दिया, प्यार किया, जिन्होंने आपको तंग किया, जिन्होंने आपको तंग किया, उनको शुक्रिया करेंगे जाने से पहले, नहीं करेंगे? जिन्होंने आपको तंग किया उसको शुक्रिया करेंगे जाने से पहले, क्यों करेंगे जाने से पहले शुक्रिया, तंग कितना किया उन्होंने पूरे जीवन, फिर से शुक्रिया क्यों करना है उनको? एक और बात क्लियर रखिएगा, जो कि बहुतों का अनुभव है और लॉजिकली भी समझ में आता है, इसको देखना अभी एक मिनट। मैं आत्मा जब इस शरीर में होती हूं, मेरा हर बात को देखने का नजरिया, हर व्यक्ति को देखने का नजरिया उतना स्पष्ट नहीं होता है, और कई बार मुझे सत्य सत्य नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, अपने संस्कारों के, लोगों की मान्यताओं के, लोगों की कही हुई बातों के, मुझे कुछ कुछ चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इतनी अस्पष्ट होती हैं कि जो सही होता है हम उसको गलत समझते हैं, और जो सही नहीं होता उसको हम सही समझते हैं, और जीवन भर हम वैसे जीते हैं। लेकिन एक सेकंड में शरीर छोड़ा और सही गलत सब स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है, और इसीलिए बार बार ये प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसे ऐसे जीते जी प्रैक्टिस करेंगे तो जीते जी भी सब कुछ सही दिखाई देना शुरू कर जाएगा, क्योंकि देह भान की रस्सियों से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं जाने से पहले, ताकि हम कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, जाने वाले को कैसे जाना चाहिए, जाने वाले को कैसे जाना चाहिए। मृत्यु भी एक सब्जेक्ट है, आर्ट ऑफ डाइंग, शरीर छोड़ने की कला, लोग जीवन जीने की कला करते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन शरीर को छोड़ने की कला अगर सीख लेंगे तो जीवन जीने की कला अपने आप आ जाएगी। आर्ट ऑफ डाइंग अगर सीख लिया तो आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप हो जाएगा। अब ये सारी चीजें जो आपने सुनाई, शुक्रिया करना, क्षमा मांगना, दुआएं देना, किसी के साथ सिर्फ थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात हुई थी उसको भी ठीक करना, ये सब करने से यहाँ का कर्मों का हिसाब किताब क्या हो जाएगा, चुप। तो आत्मा क्या हो जाएगी, लाइट। अब ये हम जाने से पहले कर रहे हैं, अब इसी को हम जीते हुए करना शुरू करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कब जाएंगे। 3 घंटे नहीं मिलते, 3 घंटे नहीं मिलते, राइट है बात, राइट है बात, 3 घंटे नहीं मिलते। कोई रात को सोए सुबह न उठे, सोचो रात को सोने से पहले झगड़ा करके सोए हो, सपोज कौन कौन कभी कभी रात को झगड़ा करके सोता, हाथ उठाओ एक मिनट, उठा लो, ऐसे नहीं हो सकता, उठाओ उठाओ उठाओ, और जिसके साथ झगड़ा किया वो भी इसी हॉल में बैठे होंगे, इधर इस तरफ और इस तरफ। आज पक्का करो इसको, आज इसको पक्का करो। पहली बात तो राजयोग रोज प्रैक्टिस करे तो झगड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ हुआ भी उसको उसी टाइम खत्म करो, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, एक एक के अनुभव सुनते हैं, अचानक कोई शरीर छोड़ देता है और कुछ घंटे पहले ऐसे ही आपस का जैसे होता है थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि कुछ बहुत बड़ा वाला, लेकिन जो पीछे रह जाता है उसको बहुत गिल्ट फील होता है, उसका बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने तो झगड़ा किया था उस दिन सुबह और वो चले गए। तो पहली बात तो झगड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया तो कितनी देर में खत्म करना, कितनी देर में खत्म करना, चलो बताओ। आज नियम लिखने अपने जीवन जीने के, अगर झगड़ा हुआ, पहले तो होना नहीं, अगर हुआ तो कितनी देर में खत्म करना, अच्छे से बोलो, कितनी देर में खत्म करना, 5 मिनट में थोड़ी, उसी टाइम। मेरे को शरीर छोड़ने में 5 मिनट थोड़ी लगते हैं, कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड, उसी समय। सामने वाला नहीं भी खत्म कर रहा होगा ना, तो आप प्यार से बोलना, सपोज मैं चली गई तो 2 मिनट प्यार से बात कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा सारा कुछ। हम लोग कभी जाने की बात नहीं करते हैं, हमें लगता है जैसे ये तो कभी होने वाला नहीं है, और क्योंकि हम जाने की बात नहीं करते, हम जाने की तैयारी नहीं करते, और क्योंकि हम जाने की तैयारी नहीं करते, हमारा जीवन जीने के समय कर्म बहुत सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। हम एक बहुत पावरफुल लाइन भगवान हमें सिखाते हैं, हर घड़ी ऐसा जिए ये आपकी अंतिम घड़ी है। कैसे जीना है, हर घड़ी ऐसा जीना है ये आपकी अंतिम घड़ी है। तो कैसा जिएंगे फिर, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कैसे जिएंगे फिर। आप देखो ना, सिर्फ पिछले कुछ महीनों को देखो क्या कुछ हो रहा है देश में, दुनिया में। अभी लोग ठीक बैठे हैं, अभी ऐसे पानी आया, खत्म। अभी आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, एक हार्ट अटैक हुआ, जो बात कर रहे थे उस पे खत्म, स्टोरी वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। आत्मा तो आगे जाती है, लेकिन उन आत्माओं के साथ जो हमारी स्टोरी थी वो क्या होती है, 1 सेकेंड में खत्म। अगर हमें ये याद रहेगा कि हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, तो हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। फिर हमारा हर कर्म कैसा होगा, फिर हमारा हर कर्म कैसा होगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब फिर से यहां हाथ रखें, मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, 1 मिनट इस आत्मा को यहां लेकर आए साइड पे, इसको यहां लेकर आए। अब पीछे मुड़ के देखें क्या रह गया, वो शरीर को देखें ऐसे लेटा हुआ होगा सफेद चादर के अंदर, देखना चाहिए अपने शरीर को वैसा पड़ा हुआ। वैराग्य शरीर छोड़ने के बाद नहीं, वैराग्य जीते जी होना चाहिए कि एक दिन तो ऐसे ही पड़े होना है इस शरीर के अंदर। उसको देखें, परिवार आसपास बैठा होगा, वो भी पीछे रह गए, उनके साथ जो झगड़े थे बातें थी वो भी पीछे रह गई, और सबको जो कमाया था वो पीछे रह गया। अब 1 मिनट इसको पकड़ो, हाथ नीचे नहीं रखो, साथ में क्या गया। तो दुनिया जब आएगी हमारे अंतिम संस्कार पर, तो कहेगी क्या लेकर गए अपने साथ, खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। तो क्यों दुनिया कहती है खाली हाथ आए खाली हाथ गए? क्योंकि इस हाथ में तुम कुछ भी नहीं ला सकते और ना कुछ लेके जा सकते हैं, वो तो राइट बात है। लेकिन आत्मा ना खाली हाथ आती है ना खाली हाथ जाती है। फिर से इसको यहां रखो, आज सुबह से देखो जो कुछ सोचा, जो कुछ बोला, जो कुछ व्यवहार किया, ये यहां रिकॉर्ड हो गया। एक सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, सब कुछ जो इस पे रिकॉर्डेड है, मैं छोड़ना भी पीछे चाहूं तो नहीं छोड़ सकती, मेरी रिकॉर्डिंग मेरे साथ जाएगी। एक मिनट देखो इस शरीर पे ये कपड़ा पहना हुआ है, अभी इसको टच करो, ये कपड़ा पहना है, कल सुबह आप फिर आएंगे आपकी ड्रेस चेंज्ड होगी, आप चेंज होंगे क्या कल सुबह? सिर्फ क्या चेंज होगा? ड्रेस। इसी तरह जब हम शरीर छोड़ते हैं और नया शरीर लेते हैं, सिर्फ ड्रेस चेंज होती है, बिल्कुल सिर्फ ड्रेस चेंज होती है, वही का वही व्यक्तित्व आगे जा रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कुछ छोटे बच्चों को गाना गाना बहुत अच्छा आता है, कुछ छोटे बच्चों को डांस करना बहुत अच्छा आता है, कुछ छोटे बच्चों को कंप्यूटर चलाना आता है, कोई छोटे बच्चों को मतलब बहुत चीजें आती हैं जिसके लिए लोग कहते हैं इनको तो सिखाया नहीं, इनको कैसे आता है? तो वो कहते सीख कर आए हैं, सीख कर आए हैं मतलब ये पिछली बार सीखा था, उसको साथ में लेकर गए हैं। तो इसको आज पक्का कर लो, मैं आत्मा खाली हाथ नहीं जाने वाली हूं, मैं भरा हुआ जाने वाली हूं, बिल्कुल भरा हुआ। यहां पर मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार, मेरी हर भाव भावना फोटो की तरह खींचती जा रही है, रिकॉर्ड होती जा रही है। और एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो पीछे रहेगा, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता वो मेरे साथ जाएगा। पीछे क्या करके जाना है वो तो हमने लिख लिया, आगे क्या लेकर जाना चाहेंगे साथ में अपने? आप देखो जब आप यहां चार दिन के लिए आए, कुछ काम आपने पीछे के ठीक किए, ऑफिस में ये कर दो, घर पे ये कर दो, फ्रिज में ये बना के रख दो, किस किस को पीछे तैयारी करके आनी पड़ी आने से पहले किया ना? तो एक आप उस दिन को देखिएगा जिस दिन आप निकल रहे थे यहां आने के लिए, एक तैयारी पीछे के काम की आप कर रहे थे और साथ में तैयारी अपना बैकपैक कर रहे थे, तो दो तैयारी चल रही थी साथ साथ, एक पीछे की, एक मेरे साथ क्या जाना है। इसी तरह जीवन जीते हुए एक पीछे की और एक मेरे साथ क्या जाना है, क्या लेकर जाना चाहेंगे साथ में? अच्छे संस्कार। कौन कौन अच्छे संस्कार लेकर जाना चाहता है? हरे, तो थोड़ा सा लिस्ट बना लेते हैं कौन से होते हैं संस्कार अच्छे जो साथ में लेकर जाने हैं, ये भी बता दो, फिर लिख लेते हैं ना, लेकर जाना है तो फिर लेकर जाना, कौन से संस्कार अच्छे होते हैं जो लेकर जाने साथ में, लिखेंगे जरा, बताएं, कोई बताए कौन से संस्कार अच्छे संस्कार गिने जाते हैं? हैं जी, शांत रहना अच्छा संस्कार है। तो आज हमने सुबह देखा मैं आत्मा कैसी हूं, शांत स्वरूप, वेरी गुड। शांत का ऑपोजिट क्या है? अशांत, मतलब सारा दिन कैसे परेशान, चीखना, चिल्लाना, उलझा हुआ, बहुत ज्यादा सोचना भी अशांति है, नॉन स्टॉप सोच, व्यर्थ संकल्प, अशांत। अब अगर मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूं ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो, और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब पीछे वो कितना भी पाठ करे मेरी शांति के लिए, हम पीछे पाठ करते हैं ना उस आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि हमें पता होता है आत्मा शांति से गई नहीं है, क्योंकि जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं की होगी आप शांति से नहीं जा सकेंगे। तो शांत रहना अच्छा संस्कार है, कुछ और संस्कार अच्छे संस्कार में गिना जाएगा? स्नेह, रिस्पेक्ट एंड लव, यस, सबके साथ स्नेह और सम्मान, लिख लीजिए मेरे साथ ये संस्कार जाना है, तभी वो बच्चा ऐसा बनेगा। कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा ऐसा बनेगा वैसा? अब अपने आप को देखें, मैं आत्मा ये शरीर छोड़ा, माँ के गर्भ में प्रवेश किया, बेबी बॉर्न, थोड़े दिन के बाद 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा। अब आजकल जो बच्चे हैं उसमें कुछ कुछ दूसरे संस्कार दिखते हैं ना, हाइपर बहुत हैं, भागते रहते, एक जगह बैठते नहीं हैं, अशांति फैलाते रहते हैं। ये कौन से बच्चे हैं ये कहाँ से आए? ये ऐसे वाले बच्चे कहाँ से आए बताइए, ये कहाँ से आए? इन बच्चे ये आए हैं यहाँ से ही आगे जाते हैं। तो हमारी यहाँ पर थोड़ी सी की हुई मेहनत सिर्फ इस जीवन के भाग्य को नहीं बदलती है, ये अगले 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 जीवन के भाग्य को बदल रही है। अब अगर हम अपने जीवन को देखें, हमारे 24 घंटे सिर्फ जो पीछे रह जाने वाला है उसकी मेहनत पे लगे हुए हैं, जो 1 सेकंड में छूट जाएगा। परमात्मा सिखाते हैं 24 में से 23 घंटे पीछे रहने वाले पर काम करो, 1 घंटा जो साथ में जाने वाला है उस पर मेहनत करो। आप रेडी अभी 1 घंटा निकालने के लिए? रेडी है 1 घंटा निकालने के लिए? स्नेह, सम्मान, शांति और कोई अच्छा संस्कार? सहयोग देना, सेवा करना, एक संस्कार डालिए अपने अंदर, निस्वार्थ सेवा। सेवा सब करते हैं लेकिन निस्वार्थ सेवा करनी है। निस्वार्थ सेवा मतलब जो किसी को नहीं पता चले और जिससे मुझे कुछ चाहिए नहीं, स्व अर्थ। स्वार्थ मतलब स्व अर्थ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ आपने किसी के लिए किया, आपको रिटर्न में शुक्रिया भी नहीं चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर उन्होंने शुक्रिया नहीं किया, इज दैट ओके? किस किस को बुरा लगता है अगर उन्होंने शुक्रिया नहीं किया तो? हाँ हाँ, तो ठालो उन्होंने शुक्रिया नहीं किया, आपने इतना कुछ किया उनके लिए। आज से छोड़ेंगे, हर चीज एक आदत है और कुछ नहीं। हमने क्यों किया वो बोलते जाएंगे, हमने क्यों किया उनके लिए वो, क्योंकि वो हमारा क्या है? क्योंकि वो हमारा संस्कार है। हमने क्यों किया? क्योंकि करते हुए हमें अच्छा लगता है। अगर हमने इसलिए किया ताकि वो हमें अच्छा कहें तो वो सेवा नहीं, इच्छा थी। सेवा की एनर्जी कैसे होती है? करे हाथ, सेवा कैसे होता है? ऐसे। अगर एक शुक्रिया भी चाहिए तो वो हाथ ऐसे हो जाएगा, और जो हाथ ऐसे हो गया वो सेवा नहीं है, वो व्यापार है। मैंने आपके लिए किया, आपने मुझे शुक्रिया किया, बिजनेस डील क्लोज्ड। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होने चाहिए जो निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ। कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में। और कुछ अच्छे संस्कारों पर लिखना है? इतना काफी अभी के लिए? आत्मा की शक्ति कैसे होनी चाहिए जाने से पहले? आत्मा रूपी बैटरी कैसे होनी चाहिए जाने से पहले? चार्ज्ड होनी चाहिए। अब तो जा रहे हैं, अब क्या करना चार्ज करके? दूसरी बात याद रखिएगा, मैं आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करूंगी, जो नया शरीर भी बनेगा वो मेरे संस्कारों अनुसार ही बनेगा। इस समय क्या हमारी मन की स्थिति हमारे शरीर पर असर डालती है? डालती है। अगर मुझे गुस्सा आया हुआ है शरीर पर असर पड़ेगा, अगर मैंने कोई बात पकड़ के रखी हुई है शरीर पर असर पड़ेगा। अगर मैंने वो बात पकड़ के मैं आगे चली गई और मेरा नया शरीर बनना है तो उस पर वो बातें का असर पड़ेगा। इसीलिए भाग्य सिर्फ इस जीवन का नहीं, आगे भी भाग्य अभी के कर्मों से ही बनता है। तो 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मेरे साथ 2 चीजें जाएंगी, लिख लेना, मेरे संस्कार और मेरे किए हुए कर्म। मेरे संस्कार और मेरे किए हुए कर्म, इसमें से कुछ पीछे नहीं छूटेगा। चाहे वो आपने 50 साल पहले का किया हुआ कर्म है, ये साथ जाएगा। और जिस क्षण वो बच्चा पैदा होगा, फिर उसके जो नए माता पिता होंगे उस नए शरीर के अंदर, वो पंडित जी को जन्म का समय बताकर एक जन्म पत्री बनवाएंगे। अभी तो बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन उस बच्चे को उसके इस जीवन काल के भाग्य का एक जन्म पत्री मिल जाएगी। किस किस के पास है? किस दिन बनी थी? तभी बन गई थी। अब हमने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया तो जन्म पत्री कैसे बन गए। तो वो जन्म पत्री किसकी है? मुझ आत्मा की जन्म पत्री है, वो छोटे से शरीर की जन्म पत्री नहीं है। वो किसकी जन्म पत्री है? उस आत्मा की जन्म पत्री है। लेकिन आत्मा ने कोई कर्म नहीं किया, वो जन्म पत्री है मेरे पिछले कर्मों के हिसाब किताब की। तो जन्म पत्री पैदा होते ही लिखा जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। जो जो कर्म यहां चुकतू नहीं किया वो आगे जाके चुकतू होगा, लेकिन चुकतू तो करना ही है। इसीलिए अब हम जब देखते हैं ऐसे कैसे हुआ, इनके साथ ऐसे कैसे हुआ, इसके साथ ऐसे कैसे हुआ, प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कभी भी जो हुआ उसके ऊपर। जो हो रहा है वो बिल्कुल हमारे कर्मों अनुसार हो रहा है। हमारे पास अब शक्ति है कि हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को क्या कर ले, चुप तो करें। तो मेरे साथ क्या जा रहा है? मेरे कर्म, मेरे संस्कार, जो मेरा क्या बनाएंगे, जो मेरा अगला भाग्य भी बनाएंगे, और अभी भी वो मेरा भाग्य बना रहे हैं। बचपन से हमने सीखा कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है, राइट रॉन्ग? कौन कौन मानता है हर चीज परमात्मा की मर्जी से होती है? हाथ उठा लो अच्छे से एक बार। गुड। अब ये बताओ, आप यहां आए किसकी मर्जी से आए? परमात्मा की मर्जी से आए। कौन कौन परमात्मा की मर्जी से आए वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए? जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए? परमात्मा ने मना कर दिया, तूने नहीं जाना? क्यों जी, आपने ऐसा क्या खास किया था कि आपको परमिशन मिले और उनको वहां घर वापस बैठने के लिए बोला? क्या क्राइटेरिया है इसका? हैं जी, परमात्मा के हमारे कर्म अनुसार परमात्मा डिसाइड करेंगे, ये भी ठीक है, ये राइट है। तो परमात्मा क्या करेगा, हर एक के कर्म देखेगा और कहेगा अच्छा आप जा सकते हो, आप नहीं जा सकते हो, आप अभी ठीक रहोगे, आप बीमार होगे, ओके, ये भी ठीक है। अब एक मिनट देखते हैं, सीधा होकर बैठो। आप माता पिता हैं, आपको अभी पावर मिलेगी, अपने बच्चे का भाग्य लिखो, अभी लिखो, मन में लिखो। आप माता पिता हैं, आपको पावर मिली है, अपने बच्चे का भाग्य लिखो। कैसा भाग्य लिखेंगे? साल में कितनी बार उसको बीमार करेंगे? कितनी बार वो फेल होगा क्लास में? नहीं। कितनी बार वो गिरेगा, उसको चोट लगेगी? पहले भाइयों के पांव में नहीं बैठना है ऐसा, आप प्लीज उठो, उधर नहीं, उस तरफ जहां बैठे थे वहीं बैठेंगे। कितनी बार उसको गिरेगा और उसको चोट लगेगी? नहीं। अच्छा चलो, तो आप अपने बच्चे का भाग्य कैसे लिखेंगे? एकदम परफेक्ट, ठीक है। अब अगर आपको अपने बच्चे के कर्मों को इवैल्यूएट करके उसका भाग्य लिखना है, तो आपका बच्चा परफेक्ट तो नहीं है, कभी कुछ अच्छा करता होगा, कभी कुछ गलती करता होगा, कभी आपका कहना मानता होगा, कभी आपका कहना नहीं मानता होगा। अब आप उसका भाग्य लिखें, उसके कर्मों को देखते हुए आप लिखेंगे उसके भाग्य में बीमारी, आप लिखेंगे उसके भाग्य में बीमारी, पर उसने कर्म तो सही नहीं किया, फिर आपने क्यों उसके भाग्य में बीमारी नहीं लिखी? क्योंकि माता पिता अपने बच्चे के भाग्य में लिख ही नहीं सकता ऐसे, इसलिए लिख ही नहीं सकता। अब अगर आपके दो बच्चे हैं, एक ज्यादा आज्ञाकारी है, एक थोड़ी मस्ती करता रहता है, क्या आप ज्यादा आज्ञाकारी वाले का ज्यादा अच्छा लिखेंगे भाग्य और दूसरे का कम लिखेंगे? यस और नो? दोनों का आप एक बराबर अच्छा लिखेंगे? जरा हाथ उठाना, कौन कौन दोनों का एक बराबर अच्छा लिखेंगे? अच्छा, एक बहुत तंग करता है आपको, बिल्कुल नहीं पढ़ता, यहां तक कि चोरी भी कर लेता है, स्कूल जाता है, किसी का भी सामान उठा के ले आता है, मारता पीटता भी है लोगों को, आप तो भी उसका भाग्य अच्छा लिखेंगे? क्योंकि माता पिता अपने बच्चे के भाग्य में दर्द नहीं लिख सकते, वो परम पिता परमात्मा है, वो क्षमा का सागर है, वो दुख हरता सुख करता है। इस समय आप देखें सृष्टि पर क्या क्या हो रहा है भाग्य के लिए, ये वो बैठकर लिखेगा। यस, वो बैठकर लिखेगा, एक बाढ़ आई इतने परिवार गए, एक युद्ध हुआ तो पता नहीं क्या क्या हुआ हर एक के साथ, थोड़े दिन में वो पड़ोस के देश में इतने बच्चे मर गए, ये भगवान बैठकर लिखता है? ये भगवान बैठकर लिख रहा है, हाँ या ना? है? अच्छा, आंख बंद करो और अपने आप से पूछो, जो अभी तक सुना वो सब छोड़ो, चाहे आज सुना या पहले सुना, अपने से पूछो कि अगर भगवान भाग्य लिख रहा है हर एक का, एक सेकंड के लिए, भगवान जो प्यार का सागर है, जो दुख हरता सुख करता, क्षमा का सागर, कल्याणकारी है, वो भाग्य लिखेगा अगर हरेक का, तो हरेक का भाग्य कैसा होगा? कैसा होगा? अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। अगर आप भाग्य लिखेंगे तो आपका बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, और अगर भगवान आपका भाग्य लिखेगा तो बीमार होंगे नहीं होंगे? आज क्या क्या हो रहा है सृष्टि पर? दो क्राइटेरिया है, अगर भगवान भाग्य लिखेगा, एक भाग्य परफेक्ट होगा, और दूसरा हम सब बच्चे हैं तो हम सबका भाग्य कैसा होगा? एक जैसा होगा, आज ना परफेक्ट है ना एक जैसा है। दूसरी मान्यता, जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा, ये राइट है? हाथ उठाओ, कौन कौन मानता है जैसा कर्म करेंगे? अच्छा, ये भी राइट है और वो भी राइट था। अब फिर से चेक करो, पहले हमने हाथ उठाया भगवान हमारा भाग्य लिखता है, फिर हमने हाथ उठाया जैसा हमारा कर्म वैसा भाग्य लिखता है। लिखता मतलब वो नहीं लिखता, हम खुद लिखते हैं अपना भाग्य अपने कर्म से। दोनों इकट्ठे राइट कैसे हो सकते हैं? या तो आप अपने बच्चे का भाग्य लिखते हैं, या आपके बच्चे का कर्म उसका भाग्य लिखता है, दोनों तो नहीं सेम हो सकते, दोनों में से एक होगा दूसरा नहीं होगा। तो कौन सा राइट लगता है, भगवान लिख रहा है भाग्य या कर्म लिख रहे हैं भाग्य? कर्म लिख रहे हैं। हाथ उठाओ, कौन लगता है कर्म लिख रहे हैं? तो आज से उंगली ऊपर नहीं रखनी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरे घर में जो प्रॉब्लम है ये सब आपकी वजह से आई है, ये करके हम परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को क्या कर लेते हैं? कभी कभी गुस्सा भी करते हैं भगवान से, कभी डरते भी हैं भगवान से, कभी तो नाराज भी हो जाते हैं उससे। आजकल इतना कुछ हो रहा है, लोग आके कहते हैं क्या करें, ईश्वर की मर्जी है, तो ऐसा ईश्वर कैसा लगेगा कि उसकी ऐसी मर्जी है मेरे लिए? तो आज से उस पर उंगली नहीं रखनी, किस पर रखनी? इस पर रखनी। इसीलिए भाग्य के लिए उंगली हमेशा यहां रखते हैं ना, भाग्य में क्या लिखा है मेरे, यहां क्यों लिखते हैं, यहां थोड़ी कुछ लिखा जाता है, लेकिन क्यों कहते हैं भाग्य में क्यों लिखा है? क्योंकि यहां वो बैठी है ना आत्मा जो लिख कर लाई है भाग्य। तो इसलिए परमात्मा पे ब्लेम नहीं, परमात्मा को भाग्य विधाता कहा जाता है। भाग्य विधाता मतलब जो भाग्य लिखने का विधान सिखाता है, हमको तरीका सिखाता है, जैसे आप अपने बच्चे को सिखाते हो ये सही है ये गलत है, ऐसे नहीं करो ऐसे करो, लेकिन बच्चा तो कर्म अपना करेगा और कर्म का परिणाम भी बच्चे के सामने आएगा। तो मेरा भाग्य कौन लिख रहा है, अच्छे से बोल दो अपने आप को, मेरा भाग्य कौन लिख रहा है? मैं खुद। और अगर भाग्य में कुछ चेंज करना है तो किसके पास जाना है? हम भूतों के पास जाते हैं अपना भाग्य चेंज कराने के लिए, प्लीज कुछ कर दो, आप प्लीज कुछ कर दो, आप प्लीज कुछ कर दो, ये सब नहीं होना चाहिए मेरे साथ, प्लीज कुछ कर दो। कोई आपको भाग्य बदलना सिखा सकता है, लेकिन कोई और आपका भाग्य बदल दे ऐसा अगर वो कहता है तो .. क्वेश्चन मार्क है। हमारा भाग्य सिर्फ एक जना बदल सकता है, कौन? हम खुद। भगवान का क्या रोल है? भगवान हमें भाग्य बदलने का तरीका सिखाता है, उसके लिए भगवान हमें संस्कार परिवर्तन का तरीका सिखाता है, भगवान हमको श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखाता है, वो हमें सिखाता है, हमें सीखकर उसको करना है। वो ही सीखने के लिए आप 3 महीना रोज सुबह सेंटर पर जाएंगे, वो ही सीखने के लिए जाएंगे कि कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। ये सीखने के लिए हम रोज परमात्मा का ज्ञान लेने के लिए सेंटर पर जाते हैं। एक बॉल पकड़ेंगे ऐसे हाथ में, हरेक पकड़ोगे, हरेक 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 करेगा। कर्म क्या है? जो हम बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, सिर्फ वो कर्म नहीं है, जो हमारी भाव है, भावना है, जो हमारी सोच है, वो भी एक ऊर्जा है जो हमसे निकलकर बाहर जाती है, वो भी हमारा कर्म है। अब इसको रिपीट करेंगे, मेरी भावना, बोलिए अच्छे से, मेरी भाव भावना, मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे व्यवहार, अब इस गेंद को फेंकेंगे, ये मेरा कर्म है। मतलब हमारी ऊर्जा जो हम क्रिएट करते हैं, एनर्जी और बाहर फेंकते हैं, ये हमारा कर्म है। फिर से उस बॉल को पकड़ें, हमारे पास क्या पावर है, कैसे फेंकना है, कब फेंकना है, किस तरह से फेंकना है, पूरी पावर हमारे पास है। अब आप हर एक सोच समझ कर अपनी गेंद को इस दीवार पर फेंकना। फेंकने के टाइम ये पता होना चाहिए कि जो गेंद जाएगी वहां हिट करेगी और वहां से वो वापस आएगी। फेंकें, एक बार देखें कैसे फेंकते। अब अगर हम इस हॉल में 3000 लोग बैठे हैं, तीनों ने गेंद फेंकी, 3000 ने फेंकी, लेकिन सबका फेंकने का तरीका अलग अलग होगा। एक ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, काम सेम है, ऑफिस सेम है, लेकिन हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग होगा, काम करने के प्रति भावना भी अलग अलग होगी। कुछ लोग भावना ऐसे होती है, काम करना है, पूरा कर, चलो घर, वो उनकी भावना होती है। एक होता है, नहीं, ये मेरा काम है, ये मेरी सेवा है, उतना एक्यूरेसी से, उतना परफेक्शन से काम वही करेंगे, लेकिन काम के पीछे की भावना भी अलग अलग होगी। होता है ऐसे कि नहीं होता? तो वो भावना भी मेरा कर्म है, वो भाव भी मेरा कर्म है। तो अगली बार अपने कर्म ये नहीं चेक करना, मैंने अच्छे से बात की, मैंने अच्छे से व्यवहार किया, मैंने सही सोचा कि नहीं सोचा। हम किसी के लिए व्यर्थ सोच के भी बहुत मीठा मीठा बात कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते, किस किस को आता है करना? हाथ उठा लो, करना, उसके बाद तो करना नहीं हमने आगे से कभी भी। मीठा मीठा बात करते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसे किससे कहते हैं, ऐसे। कर्म सोच से बन रहा है, शब्द तो बहुत थोड़े होते हैं बाहर। तो मैं अपने सोच से 100 गेंद बाहर फेंकती हूं और बोल से 3। तो अगर मैंने सम्मान और स्नेह से बोला लेकिन सम्मान और स्नेह से सोचा नहीं, तो भी मेरा कर्म कौन से खाते में जाएगा? 100 नेगेटिव थॉट्स, 3 पॉजिटिव वर्ड्स, टोटल स्कोर कितना हो गया? टोटल कर्मा स्कोर कितना हो गया? -97। तो ध्यान रखना, कोई धोखा नहीं मिलना चाहिए कि मैंने तो हर रिश्ते पे बहुत अच्छे से बात की। बात कर्म नहीं है, सोचा कैसे वो चेक करना है, क्योंकि सोच भी यहां रिकॉर्ड हो रही है। फिर से पकड़े, मेरी भाव भावना, सोच, बोल, व्यवहार, कर्म। अब पकड़ के रखना, जो गेंद ऐसे जाएगी वो फिर कैसे आएगी? वो वापस आएगी। वापस क्या आता है? परिस्थितियां। वापस आती हैं परिस्थितियां, वापस आती हैं लोगों के व्यवहार, वापस आता है काम कारोबार में उतार चढ़ाव, वापस आता है शरीर का स्वास्थ्य। सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो गेंद वापस आ रही है, सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो गेंद बाहर जा रही है। पक्का कर लें इसको एक बार फिर से, सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो गेंद बाहर जा रही है, सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है वो गेंद वापस आ रही है। जब हम कर रहे हैं वो कर्म है, जब वापस आ रहा है वो भाग्य है। अब ऐसे हाथ रखें, आपके जीवन में कुछ आ रहा है, कोई आपके साथ कैसे व्यवहार करता है, आपके काम में क्या हो रहा है, घर में परिवार में परिस्थितियां कौन सी आ रही है, ऐसे आती हैं। जब ये ऐसे आती हैं, जब अच्छी आती हैं तो शुक्रिया, लेकिन जब अच्छी नहीं आती हैं तो पहला बोल हमारा होता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब इसका जवाब दीजिए, मेरे पास ऐसी बॉल क्यों आई, बोलते जाए ये वाली गेंद मेरे पास क्यों आई, क्योंकि मैंने फेंकी थी। लिख लीजिए नोटबुक में, बिना फेंके कुछ वापस आने वाला नहीं है, बिना फेंके कुछ वापस आने वाला नहीं है, जो फेंका है वो ही आ रहा है। इसी को कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा परिणाम, जो फेंका है वो ही वापस आने वाला है। लिख लिया, पक्का हो गया, फिर से बोल दिया एक बार, जो फेंका है वो ही वापस आने वाला है। लेकिन जब फेंका था तो याद नहीं है, कब ध्यान आ रहा है, जब वापस आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम तब भी उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप, जब वो वापस आ रहा है, अब हमारी हर सोच बोल और व्यवहार सही होना चाहिए। जब वापस आती है कोई बात तो हमारा बहुत व्यर्थ चिंतन चलता है, ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। इस थॉट को एक थॉट में फुल स्टॉप करना, मेरा ही गेंद है वापस आ रहा है, फुल स्टॉप, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्या करना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये सारी अगली बॉल भी गलत चली गई सारी, किसी और के साथ अच्छा कैसे हो गया, उनकी भी उनकी गेंद वापस आ रही है। ठीक हो गया, क्या बोलेंगे तुरंत, तुरंत क्या बोलेंगे, ये क्यों हुआ मेरे साथ, मेरी गेंद वापस आ रही है, मतलब मेरा कर्म का हिसाब किताब वापस आ रहा है। अब क्या करना है, वो जब गेंद वापस आती है, हाथ रखें ऐसे और अपनी कोई गेंद सिलेक्ट कर लें जीवन में जो चल रही हो, स्वास्थ्य, काम, संस्कार, बच्चे, कुछ भी, कोई बात वापस आ रही है। सबसे पहले पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने फेंका था इसलिए आ रहा है, किसी और पे उंगली नहीं और ऊपर तो उंगली बिल्कुल नहीं। अब जब ये बात वापस आती है, हम कैसा सोचेंगे, हम कैसा बोलेंगे, हम कैसा व्यवहार करेंगे, ये हमारी नई गेंद होगी। जैसे ही एक गेंद वापस आती है उसी क्षण एक नई गेंद जाती है, जाती है या नहीं जाती है, कौन सी गेंद ज्यादा शक्तिशाली है, जो आ रही है या जो नई फेंकी जा रही है, किसमें ज्यादा पावर है, जो गेंद आ रही है या जो नई फेंकी जा रही है, किस किस को लगता है जो नई फेंकी जा रही है वो ज्यादा पावरफुल है, किस किस को लगता है जो आ रही है वो ज्यादा पावरफुल है, हाँ दोनों सेम है, जो आ रही है वो ज्यादा पावरफुल है, जो अभी फेंकी जा रही है वो ज्यादा पावरफुल है, दोनों में से हमारे कंट्रोल में कौन सी गेंद है, जो अभी फेंकी जा रही है, तो किस पे फोकस करना है, अभी पर चिंतन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इतनी देर में 10 गेंद नई वाली गलत हो जाएगी। आपकी जन्म पत्री आपको ये बताती है कौन सी गेंद वापस आने वाली है, राजयोग हमको ये सिखाता है कौन सी गेंद फेंकनी है। आप कौन सी गेंद पर फोकस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जानना जाके क्या होना है, आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, आगे बिल्कुल वही होगा जो आप अभी करेंगे। हम कुछ कर्म हिसाब किताब लेकर आए हैं, विच इज फाइन, लेकिन उनको अब हम कैसे चुकतू करेंगे? भाग्य उससे बनता है। किसी को बहुत बड़ी बीमारी होती है लेकिन वो बहुत शक्तिशाली अभी रहते हैं, परेशान नहीं होते हैं, प्यार से अपना इलाज कराते हैं, उनके लिए बात इतनी छोटी हो जाती है। किसी को छोटी सी बीमारी होती है लेकिन उसमें बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत चिंता करते हैं, उनके लिए वो बीमारी बहुत बड़ी बन जाती है। बीमारी का साइज कहाँ है? यहाँ हमने कैसा उसके बारे में सोचा। तो सारा फोकस किस गेंद पे रखना है? सारा फोकस किस गेंद पे रखना है? इस पर। अब देखें, कोई आपसे व्यवहार अच्छे से नहीं कर रहा, कोई ऑफिस में बार बार आपके काम कारोबार में कोई ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ भी ऐसे है, कोई आपको बहुत सहयोग दे रहा है, कोई आपकी बहुत मदद कर रहा है, किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया, उसने कुछ नहीं किया, किसी के लिए आपने कुछ नहीं किया, उसके लिए उसने आपके लिए बहुत कुछ किया, सारा दिन चल रहा है लेकिन कुछ भी ऐसे ही नहीं चल रहा, सब कुछ हमारी फेंकी हुई गेंद है। तो आप क्यों यहां आए और वो क्यों नहीं आए? क्योंकि आपकी फेंकी हुई गेंद अभी वापस आई है, उनकी बाद में आएगी, जिस दिन आएगी वो आ जाएंगे, लेकिन आपकी अब आ गई है इस समय पर। लेकिन कुछ कर्म करके आए थे इसलिए यहां आए हैं, यहां आने से तो थोड़ा सा भाग्य में चेंज आएगा, अब क्या करेंगे इसके साथ वो आगे का भाग्य डिसाइड करेगा। हर हफ्ते मेहमान आते हैं लेकिन यहाँ जाने के बाद यहाँ से हर एक का भाग्य अलग अलग होता है। किसी के लिए वो 3 दिन का हॉलिडे होता है, किसी के लिए वो 3 दिन शांति का अनुभव होता है, किसी के लिए वो 3 दिन अच्छा फील हुआ वो अनुभव होता है, किसी के लिए 3 दिन कुछ सीख कर आए वो अनुभव होता है, और किसी के लिए 3 दिन जीवन बदलने वाला अनुभव होता है, क्योंकि वो उसको जाकर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो चॉइस अभी भी हमारी है। पूर्व कर्मों से हम यहां आए हैं, अब क्या करेंगे वो आज का कर्म डिसाइड करेगा। तो यहां आना वो उसका रिटर्न था, अब क्या फेंकेंगे वो अब की चॉइस होगी। तो हर क्षण ये वाली गेंद बहुत पावरफुल है, ठीक है? ये तो फोकस किस पे करना चाहिए हमेशा। अब कुछ बातें हमारे सामने आएंगी, कुछ लोग हमारे सामने ऐसे आएंगे, कुछ रिश्तों में हमारे साथ ऐसा करेंगे, हमने उनके लिए कभी स्वप्न में भी गलत नहीं सोचा होगा, फिर भी वो हमारे साथ गलत करेंगे। तो फिर मन कहेगा मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, मैंने तो हमेशा उनके साथ अच्छा किया। कभी कभी आप अपना बच्चे के लिए इतना अच्छा करते हैं लेकिन वो बड़े होके कुछ ऑपोजिट कर देता है, ऐसा कैसे हो गया, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं ना उसके साथ, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो याद रखना है कर्म का हिसाब किताब किसका और किसका है, किसका और किसका है? माता पिता और बच्चे का कर्म हिसाब किताब नहीं है, आत्मा और आत्मा का कर्म का हिसाब किताब है। क्यों जाने के समय हम सारे हिसाब किताब चुकतू करना चाहते हैं? अभी तो मिलना नहीं उनको इसके बाद ना, तो फिर क्यों ठीक करना है जाने के बाद? इसलिए ठीक करना है जाने से पहले क्योंकि पता है कि फिर मिलेंगे, पता है कि फिर मिलेंगे। चलो चेक करो 3 मिनट में अपने हिसाब किताब और अभी चेंज करो उसको मन से।
Thank you.
किस किस को कुछ दिखा जो ठीक करना है? हाथ उठाओ, कुछ दिखा जो ठीक करना है? दिखा जो ठीक करना है, हाथ उठाओ। बताना नहीं है, सिर्फ दिखा आपको तो हाथ उठाओ, किसी ने नहीं बताना कुछ भी। दिखा, ये रोज चेक करना है। अब सपोज मैं और ये बहन एक दूसरे को मिलते हैं, हमारी अच्छी दोस्ती होती है, हम इकट्ठे कुछ काम करते हैं, काम बहुत अच्छा चल जाता है, हमारा रिश्ता और स्ट्रांग बन जाता है और हम बहुत तरक्की करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, बड़े अच्छे कर्म हम दोनों के आपस में चल रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट 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 परफेक्ट। और फिर अगर मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसको धोखा दे दिया, तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा तो फायदा ही फायदा, सारा धन मेरे पास आ गया, सारा प्रॉफिट मेरे पास आ गया। उस आत्मा ने सब कुछ खो दिया। किसके कर्म की वजह से खोया? मेरे कर्म की वजह से खोया। और उसकी वजह से सिर्फ धन नहीं खोया, मन का सुकून खोया, और मन का सुकून गया तो तन का स्वास्थ्य पर भी असर पड़ गया, उसका घर ही बिखर गया पूरा। दुनिया देख रही थी और दुनिया ने कहा, अरे इसने गलत कर्म किया, इसका तो सब अच्छा चल रहा है, उसने अच्छे कर्म किए थे, उसका सब खराब हो गया। क्योंकि दुनिया सिर्फ इतना ही देख सकती है जो इन आंखों से दिखाई दे सकता है। ऐसे करते करते जीवन जी रहे थे, एक क्षण आया, मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, उस आत्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। क्या हम फिर मिलेंगे? क्या वो और मैं फिर मिलेंगे? यस और नो? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, पक्का कर लो, लिख लो। जो जो हमारे साथ अभी हैं, पहले भी मिले थे, आगे भी मिलेंगे, लिख लो, पक्का करो। आप तलाक भी ले लो, फिर भी मिलेंगे। आप नौकरी भी छोड़ दो, फिर से वो लोग मिलेंगे। ऐसे छोड़ने से कोई हिसाब किताब चुकतू नहीं होते। हम फिर मिलेंगे, पहले भी मिले थे, पहले जो मिले थे उस आधार से अभी चल रहा है, अभी जिसको चेंज करेंगे आगे उससे मिलेंगे। अब मैंने भी नया शरीर ले लिया, उस आत्मा ने भी नया शरीर लिया, जब हम फिर मिलेंगे, हम दोनों के बीच कुछ होगा ऐसा, एज अ रिजल्ट ऑफ जो पहले हम करके आए हैं? होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कि यहीं के यहीं फिनिश हो, आगे नहीं जाना चाहिए हमारे साथ कुछ भी? क्या होना चाहिए? आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वहीं का वहीं फिनिश होना चाहिए। क्या करना है? वहीं का वहीं फिनिश होना चाहिए। कौन कौन सोचता है वहीं का वहीं फिनिश होना चाहिए? फिर अच्छा वाला भी आगे नहीं जाएगा फिर? हमारे मेजोरिटी कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आज आप स्वस्थ शरीर में बैठे हुए हैं, 4 दिन आराम से निकाल कर आ सके हैं अपने लिए, पीछे एक खुश परिवार को छोड़ के आए हैं। ये सब अच्छे कर्मों का फल होता है, ऐसे ही नहीं मिल रहा ये किसी को भी। इतने सारे अच्छे कर्म करते हैं इसलिए भाग्य इतना अच्छा है। बीच में छोटे छोटे 2-3 गलतियां ही होती हैं, मोटी मोटी ऐसे, तो अच्छा भी वापस आएगा और कुछ गलत किया होगा तो वो भी वापस आएगा। तो जब ये और मैं फिर से रिश्ते में आएंगे, मैंने इनको कौन सा कर्म का हिसाब किताब क्या है मेरा? मैंने इनका धन का नुकसान किया, मन का नुकसान किया, तन का भी नुकसान किया, जन रिश्ते भी बिखर गए। ये जब मेरे जीवन में आएंगे, जरूरी नहीं है पहले दिन ऐसा कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा फिर से, और फिर ऐसा कुछ होगा कि मेरा भी धन जन मन तन सब अफेक्ट होगा। ये मेरे घर में कौन से रिश्ते में बनकर आ सकते हैं? ये कौन से रिश्ते में आ सकते हैं? कौन से रिश्ते में आ सकते हैं? इमेजिनेशन, इमेजिन, कौन से रिश्ते में आ सकते हैं? धन पर भी वार होगा, मन पर भी वार होगा, तन पर भी वार होगा, रिश्तों पर भी वार होगा। ये कौन सा रिश्ता बनकर आ सकते हैं? हाँ, बच्चा बनकर आएंगे। ओ, और कुछ? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितना कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक अकाउंट होता है, उतना नजदीक के रिश्ते आने, आप पड़ोसी बन के नहीं चुकतो होगा ये सब कुछ। इसीलिए आजकल निकट संबंधों में प्रॉब्लम आती है तो लोग कहते हैं बेटा होकर ऐसे किया, भाई होकर ऐसे किया, पत्नी होकर ऐसे किया। वो भाई बेटा पति पत्नी तो सिर्फ एक रोल है जो अभी प्ले कर रहे हैं, सोल वही है जिसके साथ हम किताब किताब क्रिएट करके आए हुए हैं, तो वो नजदीक ही आएंगे। इसलिए हर कर्म कैसा करना है, कैसे करना है हर कर्म? कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसकी बॉल वापस नहीं आएगी। कभी कभी अच्छे कर्म करके थक जाते लोग, कितना हम अच्छा करें भाई, बाकी तो लोग अच्छा नहीं कर रहे, हम कब तक अच्छा करें? कोई श्रेष्ठ भाग्य को भी गिनती करता है क्या कभी, हम कब तक अच्छा करें? ऐसे कोई गिनेगा कभी? वो श्रेष्ठ कर्म करना हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए, उसकी गिनती नहीं करनी होती मैंने कितनी बार अच्छा कर्म करना है, वो मेरा संस्कार बन जाए, वो मेरी नेचर बन जाए, क्योंकि हर कर्म का परिणाम आना ही आना है। अब अगर मेरे साथ कोई व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा है, वो मेरा ही पहले फेंका हुआ बॉल वापस आ रहा है, अब मुझे राइट बॉल भेजना है। ऐसा नहीं है वहीं से गलत आती रहेगी। ज्यादा पावरफुल कौन सी बॉल है, पकड़ के रखें, ये विजुअल क्रिएट करें। मुश्किल वाली बॉल आ रही है, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन सी बॉल है? अब जो फें, हमेशा हमेशा वर्तमान ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो तो फेंक चुके ना हम, उसका हम कुछ नहीं कर सकते अभी। तो इसको भी पक्का करें, हर क्षण पास्ट वापस आ रहा है, मतलब मैंने जो पहले बॉल फेंकी, करें इसको, पास्ट वाली बॉल वापस आ रही है, प्रेजेंट वाली बॉल फेंकी जा रही है, और जो प्रेजेंट में फेंकेंगे वही फ्यूचर में वापस आएगा, मतलब भूतकाल वापस आ रहा है, वर्तमान बन रहा है, भविष्य निश्चित हो रहा है। तीनों काल साथ साथ चलते हैं, इसलिए परमात्मा सिखाते हैं त्रिकाल दर्शी होकर कर्म करो, ऐसे ही नहीं कर्म कर दो कोई भी, त्रिकाल दर्शी होकर कि ये मेरा पूर्व वापिस आ रहा है, अब जो कर रहे हैं ये मेरा वर्तमान है और ये ही मेरा भविष्य बन रहा है। तो दुनिया कहती है सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, जो लिखा हुआ है वही हो रहा है। बिल्कुल राइट बात है, जो लिखा हुआ है वही हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है लिखा किसने है। जो लिखा है वही हो रहा है, लेकिन वो लिखा किसने है? उंगली रखें, बस हमने वो छोटी सी गड़बड़ की, हमने कहा उसने लिखा, उसने नहीं लिखा, किसने लिखा? मैंने लिखा, लेकिन अभी भी लिख रहे हैं। जो लिखा है उसकी भोगना नहीं भोगनी है, जो अब लिखेंगे उससे भोगना कम हो जाएगी। बहुत बार हमारे पास सेंटर पे भाई बहने आते हैं, कहते हैं हमारी जन्म पत्री में लिखा है हमारा अगला साल बहुत 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 मुश्किल है। कहा तो मुश्किल है तो क्या करेंगे, मुश्किल है तो एक ही चीज, अपनी शक्ति को बढ़ा लेंगे। कोई आपको बोले कल एग्जाम में जो पेपर आने वाला है वो बहुत 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 डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट की डेफिनेशन क्या है? जितनी आपने पढ़ाई की होगी, डिफिकल्ट सा डिफिकल्ट पेपर भी अच्छे से पढ़े हुए बच्चे के लिए बहुत आसान होता है, और आसान सा आसान पेपर भी जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी अगर आप समय देखें दुनिया में, छोटी छोटी बातों में लोग घबरा जाते हो, पेपर का कोई साइज भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, इतनी बड़ी बात आ गई, इतनी ये कोई बात है? और अगर शक्ति भर लेंगे तो बड़े से बड़ी बात में भी, तो आने वाली बॉल का कोई साइज नहीं है, जाने वाली बॉल का साइज ढूंढने के मैंने अब कैसा भेजना है। तो परमात्मा का ज्ञान और शक्तियों को रोज अपने अंदर भरेंगे तो आत्मा की शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले का कुछ भी आ जाए ये बॉल सही फेंकनी है, ठीक है? अब आपके साथ कोई व्यवहार अच्छा ना करे आप क्या फेंकने वाले हैं, क्या फेंकने वाले हैं? दुनिया में कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पहली बात, ईंट क्यों आई मेरे लाइफ में, ईंट क्यों आई मेरी लाइफ में? क्योंकि मैंने ईंट फेंकी थी। अभी पत्थर से जवाब देंगे तो वापस क्या आने वाला है, पत्थर ही आने वाला है। आप किससे जवाब देंगे, आप फूल से जवाब देंगे? अच्छा, कौन कौन फूल फेंकना चाहते हैं, हाथ उठाओ। सिर्फ यहां ही ऐसा है या मंडे के बाद भी यही आंसर रहना चाहिए? एक बात ध्यान रखना, ये आंसर सेम नहीं रहेगा मंडे के बाद, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस ईंट का जवाब पत्थर की दुनिया में वापस जाएंगे, वो वायुमंडल होगा, वो वाइब्रेशन होंगे, वो संग होगा, उसका रंग होगा, उसका प्रभाव होगा और हमारी अपनी कमजोर संस्कार होंगे। इसलिए हम रोज सुबह सेंटर जाते हैं, इसलिए हम रोज सुबह सेंटर जाते हैं कि रोज वापस उस संग में जाएं, उस वायुमंडल में जाएं, उसका प्रभाव पड़ता रहे, सोच और कर्म सही रहेंगे। तो आज से हर एक के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं। क्षमा, क्षमा करना आसान है? आसान है क्षमा करना? किसी ने हमारे साथ गलत किया, क्षमा करना आसान है? किसको क्षमा कर रहे हैं, किसको क्षमा कर रहे हैं? उन्होंने मेरे साथ गलत क्यों किया? मैंने पहले फेंका था, मैंने अभी अगर क्षमा किया तो किसका भाग्य बदला? तो किस पर एहसान, किस पर एहसान? और अगर पकड़ के रखा तो किसका नुकसान? मेरा। तो क्षमा करें, फटाफट आंख बंद करें, लेकर आए उनको सामने। किसी के साथ बैर नहीं है, किसी के साथ मन उलझा हुआ नहीं, रस्सियों को खोलना है, रस्सियां गांठे बांध के नहीं रखना किसी के साथ। कुछ भी सामने वाला कर ले, कोई अपशब्द बोलेगा, कोई विघ्न डालेगा, अपनी प्रोटेक्शन जरूर करनी है। ये नहीं कोई मुझे एक्सप्लॉइट करे और हम एक्सप्लॉइट होते रहे, ऐसा नहीं, लेकिन मन से बैर नहीं, मन से नफरत नहीं, दुआएं देकर उस हिसाब किताब को परिवर्तन करना है। उनको देखें, एक आत्मा के रूप में देखें और उनसे कहें, ये जो हमारे बीच चल रहा था ये पुराना हिसाब किताब था, आज इसको फुल स्टॉप करते हैं। पास्ट कार्मिक अकाउंट फुल स्टॉप। आपने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूं और मैं पूर्व कर्म में आपके साथ कुछ करके आई थी उसके लिए मैं आपसे क्षमा क्या करेंगे मांग। किससे हम क्षमा मांग रहे हैं? जो हमारे साथ आज गलत कर रहे हैं उनसे मन में क्षमा मांगनी है, क्योंकि वो गलत आई इसलिए रहा है क्योंकि हम कुछ ना कुछ करके आए हैं। पूर्व किए हुए कर्म के लिए क्षमा मांगनी, आज वो जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए क्षमा करना और एक संकल्प करना कि ये कार्मिक अकाउंट अब फुल स्टॉप। रिश्ता फुल स्टॉप नहीं, लेकिन ये एनर्जी जो चल रही है हमारे बीच इसको करेंगे फुल स्टॉप और कहेंगे मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, फेंको, दुआएं, दुआएं और दुआएं। ये सीख लिया ना, अगर सबके लिए दुआएं 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 फेंकना है तो आप हमेशा लाइट रहेंगे। हमारे पास स्टॉक ही सिर्फ दुआओं का हो, वो कुछ करे फिर दुआएं भेजो, वो कुछ करे फिर दुआएं भेजो, हमेशा। ठीक है, ईजी है ये करना, एक दिन करने से नहीं होगा, आप कम से कम 15-20 दिन रोज रात को सोने से पहले इसको एक बार करिएगा। याद रखिएगा 3 घंटे नहीं मिलते हैं, और अगर मिल भी गए तो ये सब याद नहीं आना उस टाइम पर, उस समय तो बच्चे ये वो उसी में हो जाएंगे सारा कुछ। हम कब करना है इसको, इसको कब करना है? हर रोज करना है, इसको जीवन जीने का तरीका बनाना है। गांठे कब खोलनी है, गांठे कब खोलनी है? अब खोलनी है और उसके बाद गांठे बनानी नहीं है। जब अंतिम संस्कार पर जाते हैं तो पंडित जी वो लकड़ी देते हैं तोड़ने के लिए, पता है सबको लकड़ी मिलती है, तो अंतिम संस्कार किया बाहर आए वो लकड़ी देते हैं, ये तोड़ो। लकड़ी तोड़ना मतलब मेरा इस आत्मा के साथ हिसाब किताब फिनिश्ड, लेकिन वो लकड़ी तोड़ना तो सिर्फ सिंबॉलिक है, सिखाने के लिए कि उनके साथ का हिसाब किताब को क्या करे, चुप दो। कभी कभी कोई आत्मा का शरीर बीमार है, बहुत बीमार है, डॉक्टर बोलता है कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आत्मा देह को नहीं छोड़ती है, होता है ऐसा नहीं होता है? उस समय आप पूरे परिवार को उधर बुला लो और बोलो किस किस की अपनी जो जो बात थी उनसे करके ठीक करो उसको अभी। हर एक की अपनी अपनी कहानी होती है हर रिश्ते के अंदर। वो बैठे उनके साथ, उनसे बात करें, उनको क्षमा करें, उनसे क्षमा मांगे और फिर परिवार उस आत्मा से कहे कि हमारा हिसाब किताब चुक दो, आप हमारी चिंता नहीं करो, हमारी मोह और चिंता की धागे उनको आगे नहीं जाने देते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे आप हमारी चिंता नहीं करो, आपका नया शरीर बहुत सुंदर आपके लिए रेडी है, आत्मा उड़ जाएगी बाहर। लेकिन अगर कोई रस्सी ऐसे अटकी होगी कितने दिन कितने महीने और कभी कभी उससे भी ज्यादा, वो आत्मा उस शरीर में सिर्फ बैठी रहेगी और कुछ नहीं कर सकती। तो सिर्फ खुद के देह को प्यार से नहीं छोड़ना है, दूसरों को भी छोड़ने देने की शक्ति देनी है और उसके लिए जीने के तरीके में करना है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है उसको बहुत पश्चाताप होता है। एक और चीज शरीर छोड़ने के बाद होती है, हमको हमारे सही और गलत कर्म का दिखाई देने लग जाते हैं और फिर आत्मा कहती है मुझे एक चांस मिल जाए मैं वापस जाकर इस कर्म को ठीक कर दूं, वो चांस नहीं मिलेगा। तो अटेंशन किस पे रखना है, क्या फेंकना है, सारा दिन क्या फेंकना है, सिर्फ और सिर्फ दुआएं। हम इसको कहते हैं व्हाइट वॉल, सिर्फ सफेद रंग की एनर्जी, प्योर एनर्जी सबको भेजते रहे। सामने से कोई भी रंग आए हमारे पास एक ही रंग होना चाहिए। तो जब हम रोज सुबह सेंटर पर आते हैं, अभी सब याद है तो हम कर रहे हैं, चार दिन के बाद ये सब भूल जाएगा। इसलिए जब हम रोज सेंटर पर आते हैं, रोज ज्ञान को रिवाइज करते हैं, रोज उस वायुमंडल में आते हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रोज राजयोग की विधि द्वारा परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो सिर्फ ज्ञान नहीं सही कर्म करने की शक्ति भी चाहिए होती है। ये जो समय चल रहा है अचानक का है, अचानक आपकी कोई भी फेंकी हुई गेंद वापस आ जाएगी, अचानक आपके बच्चों की कोई भी फेंकी हुई गेंद वापस आ जाएगी। याद रखना वो बच्चा सिर्फ रोल है, वो भी आत्मा है जो अपने पूर्व कर्म करके आए हैं और कभी भी कोई भी हिसाब किताब सामने आ सकता है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जब वो आएगा, एज अ पेरेंट आपका क्या जिम्मेवारी है, उसको उस हिसाब किताब को चुकतू करने की विधि और शक्ति देना। लेकिन अगर आप ही घबरा गए, आप ही परेशान हो गए, तो आपका एक तो कर्म बिगड़ जाएगा और आप उसको सही कर्म करने की शक्ति नहीं दे पाएंगे। तो एक है अब हर कर्म सही हो, दूसरा है जो हिसाब किताब आ रहे हैं उनको आसानी से चुकतो करना है, किसी भी बात में व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। सुबह सुबह घर से निकले, खाली सड़क थी, फिर भी ऐसा मुड़े और गाड़ी पर किसी ने डेंट मार दिया, 2000 रुपए ले गया सुबह सुबह। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, अभी तो मैं ऐसे क्यों टर्न किया, इतने सारे बॉल नहीं फेंकने उतनी सी चीज के लिए। बोलो लिए थे 2000 रुपए, नहीं वापस किए, लिया और चला गया, खत्म हो गया हिसाब किताब, फिनिश्ड। वो आएंगे एग्जैक्टली वो लेने के लिए, इसीलिए कोई भी हिसाब किताब पेंडिंग नहीं रखना, ना पैसों का ना कर्मों का, वो आएंगे एग्जैक्टली लेने के लिए उसको। सिर्फ फर्क यह है कि आप उनको पहचानेंगे नहीं इस टाइम कि ये वही वाला है, क्योंकि हम खुद को भी भूल गए हैं कि हम कौन से वाले थे उस शरीर के अंदर। तो सब कुछ जो हो रहा है वो बिल्कुल कैसे हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। इसीलिए हर घर में गीता सार टंगा होता है ना कि जो हुआ, क्या लिखा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो बहुत अच्छा। इतना सब कुछ तो गलत हो रहा है, फिर ऐसा क्यों लिखा। इसका मीनिंग है जो हुआ वो सही, जो हो रहा है वो सही, और जो होगा वो बिल्कुल सही कर्मों के हिसाब किताब से। तो अब सारा दिन अटेंशन किस पे, किस पे? इसलिए यहां से जब वापस जाएंगे घर, रोज सुबह अमृत वेले उठेंगे। कौन कौन उठा आज सुबह 4 बजे? कल कौन कौन उठेगा 4 बजे? परसों फिर उठेंगे, जाने के बाद संस्कार बना लेंगे। वो समय होता है जहां डायरेक्ट वो हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्ट होने का समय। जाने के बाद सेंटर पर जाकर हम फिर से एक बार मेडिटेशन का कोर्स करेंगे। फिर हम 3 महीने रोज 1 घंटे के लिए जाएंगे। अब कौन हाथ उठाएगा कि 3 महीने जाएंगे हिसाब किताब चुप तो करने के लिए? जाएंगे। तीसरी चीज, अपने भोजन का शुद्धिकरण करेंगे। किसी की मृत्यु को अपना स्वास्थ्य और स्वाद का आधार नहीं बनाना, ये कोई कर्म नहीं बनता। कोई कर्म है ऐसा किसी के साथ ऐसा करना ताकि हमें स्वाद मिले? कोई रोए चीखे चिल्लाए हिंसा हो मृत्यु हो क्योंकि हमें स्वाद मिले? तो कर्म भी सही नहीं है और वाइब्रेशन तो बिल्कुल सही नहीं है। अभी नवरात्रों का व्रत कौन कौन रखता? कौन कौन नवरात्रों के टाइम शाकाहारी भोजन खाते और फिर बाद में चेंज दशहरे के रन से? यहां आए हैं इतना जरूर करके जाएं, छोड़ना नहीं है, 3 महीने के लिए छोड़कर देखना है। अगर आप नॉनवेज मांसाहारी भोजन खाते हैं या कोई भी और व्यसन का सेवन करते हैं, 3 महीने के लिए प्रतिज्ञा करके जाएं और 3 महीने करके देखें, आपको पेट और मन दोनों में बहुत लाइट फील होने वाला है। करें 3 महीने की प्रतिज्ञा। कौन कौन हिम्मत करता है 3 महीने की प्रतिज्ञा करने के लिए? उठाओ हाथ 3 महीने वाले, फिर बाकी सब आपको दुआएं देंगे जो अभी खाते हैं लेकिन 3 महीना नहीं खाएंगे। 4 दिन तो इधर ही हो जाएंगे, ईजी है यहां से छोड़ना। उठाएं हाथ 3 महीने कौन रेडी है प्रतिज्ञा करने के लिए? वेरी गुड। और सब लोग उनके हाथ देखकर उनको दुआएं दें कि सफलता आपके लिए निश्चित है, ये तो होना ही है। चलिए सीधा होकर बैठें। मैं आत्मा लाइट, ज्योति लाइट और स्थिति में भी लाइट, एवर रेडी, सदा एवर रेडी, कर्मों के हिसाब किताब सेटल्ड, कुछ पेंडिंग नहीं रखना है उस 3 घंटे के लिए, एवर रेडी। कभी भी जाना पड़े आगे, सब सेटल कर दिया है, क्षमा कर दिया है, क्षमा मांग लिया है, सब रेडी है। किसी से बातचीत बंद हो आज फोन करो उनको, ओम शांति करो, बोलो याद आई आपकी आज। ये नहीं सोचो वो क्या बोलेंगे, हम करेंगे आज। जो करेगा सो पाएगा। मैं आत्मा हूं, श्रेष्ठ कर्म का बीज मेरा संस्कार है। सामने से कुछ भी आए, मेरी तरफ से दुआएं, शुभ भावना, निस्वार्थ सेवा, सफेद रंग की गेंद मेरी तरफ से हर एक को सदा हमेशा। एकदम लाइट, सबको शुक्रिया, सारे हिसाब किताब झुक दो। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से हर स्थिति को बनाएंगे, हर कर्म अटेंशन से, हर सोच अटेंशन से, परमात्मा साथ है, साथी है, उसकी शिक्षाओं और श्रीमत को मैं आत्मा अपने कर्मों का आधार बनाती हूँ। अब बिल्कुल इसी साइलेंस में बैठेंगे 3 मिनट के लिए, और बिल्कुल साइलेंस में अपना होमवर्क करना है, अंदर एक एक को नाम से चेक करना है, किसके साथ कौन सा हिसाब किताब, कौन सी पुरानी बात, कौन सा झगड़ा, उसको मन की स्थिति में ठीक करना है, और वो अभी करना है। अभी नहीं किया तो नहीं होगा। बिल्कुल साइलेंस में 3 मिनट बैठेंगे, हमारा अगला सेशन स्टार्ट होगा, वो तैयारी करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे। ये वायुमंडल, परमात्मा की शक्ति और ज्ञान तीनों हमारे पास हैं अभी, इसको यूज़ करें और इस 3 मिनट में अपनी जन्म पत्री को तैयार करें, क्या क्या बदलना है उसके अंदर।